नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में भाजपा 7, आम आदमी पार्टी 3, कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक एक सीट पर जीती। दिल्ली की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने नगर निगम को 175 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सुनवाई कार्यक्रम में नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 32 दिव्यांगजनों और कई संस्थानों को पुरस्कृत किया और दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। समाचार विस्तार से। दिल्ली के 12 वार्डों में हुए नगर निगम उपचुनाव में आज भाजपा ने 7 सीटें जीत ली। वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को एक एक सीट पर जीत मिली। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रेखा गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह कर्मठ कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, समर्पण तथा संगठन की सामूहिक शक्ति का सशक्त प्रमाण है। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनभावना सार्थक कार्य, विश्वसनीय नेतृत्व और जवाबदेह शासन पर अपना विश्वास प्रकट कर रही है।
दिल्ली की जनता ने हमें भरपूर प्यार दिया था। 45% से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, जबकि आम आदमी पार्टी 34%। और मुझे लगता है कि 7 सीटें जीतने के बाद दिल्ली नगर निगम में आज संख्या 123 से लगभग हो जाएगी और अब दिल्ली की जो नई सरकार हमारी बेहतरी से जो प्रयास करिए काम करने के लिए नगर निगम में मिलकर तेजी से दिल्ली की जनता बेहतर सुविधाएं दे पाए, उस दिशा में काम करेंगे।
उपचुनाव 30 नवंबर को 580 मतदान केंद्रों पर हुए थे, जिनमें 26 महिलाओं सहित 51 उम्मीदवार मैदान में थे। दिल्ली की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने नगर निगम को 175 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज राजधानी के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। श्री सूद ने सागरपुर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं जनकपुरी विधानसभा में चाणक्य प्लेस पर RCC नाले के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने रामदत्त एनक्लेव में सड़क निर्माण कार्य की भी शुरुआत की। श्री सूद ने क्षेत्र संबंधित जिला अधिकारी को नाले की सफाई, ग्रीन एरिया के सुधार के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को सड़क पर आवारा पशुओं की समस्या से मुक्ति दिलाने के भी ठोस उपाय करने के आदेश दिए।
पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज चाणक्य प्लेस पार्ट 1 पार्ट 2 में सीतापुरी में 25 फुट 30 फुट और 40 फुट रोड पर पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए हमने ये उद्घाटन किया है। बारी बारी हर सड़क पर यह काम किया जाएगा। अगले 6 महीने में यहाँ से वाटर लॉगिंग की समस्या को खत्म करने के लिए काम किया जाएगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई केवल समस्याएं सुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को करीब से समझने, उनकी भावनाओं को महसूस करने और कार्यशैली को और अधिक संवेदनशील बनाने का अवसर है। मुख्यमंत्री विश्व अधिवक्ता दिवस के अवसर पर 30,000 कोर्ट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल हुई। इस मौके पर श्रीमती गुप्ता ने सभी अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अभिनंदन कर उनका धन्यवाद किया, जिन्हें 50 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद की विरासत सभी को यह संदेश देती है कि न्याय केवल विधिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नैतिकता, परिश्रम और लोक सेवा के गहरे सम्मिश्रण से सशक्त होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस है। इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 32 दिव्यांगजनों और कई संस्थानों को उनके उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि किसी समाज को सही मायने में तभी विकसित किया जा सकता है जब दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार किया जाए। श्रीमती मुर्मू ने दिव्यांगजनों की सराहना की और कहा कि उनकी अविश्वसनीय उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
समाज और सरकार की सजगता और सक्रियता के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने 29 पदक प्राप्त किए थे। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं और प्रतिस्पर्धाओं को आयोजन करके सरकार द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।
सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का पुरस्कार जीतने वाली नागपुर की पहली 22 वर्षीय व्हीलचेयर मॉडल अबीली विजय जरित ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अपना अनुभव साझा किया।
नाम अबोली जरित है, मैं 22 इयर्स की हूँ, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। नागपुर की फर्स्ट व्हीलचेयर मॉडल, हैप्पीनेस एम्बेसडर, मोटिवेशनल स्पीकर, सिंगर एंड इन्फ्लुएंसर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड नेशनल इंटरनेशनल आर्टिस्ट। मेरी जर्नी 8 इयर्स से शुरू है और 8 इयर्स के करियर में मैंने इतना सब कुछ हासिल किया है। मुझे क्रोनिक किडनी डिजीज है जिसमें मेरी दोनों किडनीज डैमेज है और रेगुलर साइज से छोटी है और मुझे ब्लैडर नहीं है। मैं मोटिवेट करती हूँ पेशेंट्स को एंड एज अ रोल मॉडल आज मुझे अवार्ड मिल रहा है, नेशनल अवार्ड, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है एंड मेरी फैमिली को भी।
वहीं इंदौर की पैरा एथलीट पूजा गर्ग ने भी अपने संघर्ष और सफलता की कहानी आकाशवाणी समाचार से साझा की।
मैं कयाकिंग कैनो की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैंने इंडिया को 3 बार इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करा है, उज्बेकिस्तान, जापान और थाईलैंड में, और मैं मेडलिस्ट भी हूँ। इस साल एशियन चैंपियनशिप में मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मैं इंडिया टीम की रेनाउंड शूटर भी रही हूँ। इंजरी से पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, लेकिन शायद लाइफ को कुछ और मंजूर था और मैं आज इंडिया टीम की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ।
यह राष्ट्रीय पुरस्कार न केवल दिव्यांगजनों की क्षमताओं और उपलब्धियों को उजागर करते हैं बल्कि समाज में उनकी मुख्य धारा में भागीदारी को भी प्रोत्साहित करते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका गुप्ता।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रेजिडेंट डॉक्टरों और छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इसमें छात्रों ने सुगम्यता, सहानुभूति और सामाजिक समावेशन के महत्व पर बल दिया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर वितरित किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के समर्थन में समर्पित कार्य के लिए सक्षम एक अभियान गैर सरकारी संगठन को सम्मानित भी किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी चिन्हित श्रेणियों में कार्य योजनाओं के उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की स्थिति का आकलन करने के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी NCR राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं के जमीनी स्तर पर कार्य कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा आज वायु प्रदूषण पर आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए नॉन स्टॉप मिशन मोड पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सड़कों, औद्योगिक इलाकों और हॉटस्पॉट पर लगातार स्प्रिंकलिंग, सफाई, निगरानी और त्वरित कार्रवाई में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रतिदिन हजारों किलोमीटर सड़कों को धूल मुक्त करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विशेष पानी छिड़काव कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदूषण रोधी उपायों और नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सरकारी तथा निजी एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा।
अगर किसी का भी मलबा और कचरा दिखाई देगा तो उनके ऊपर DPCC को आदेश दिया गया है कि तुरंत कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर सख्त निर्देश करके उनके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगाई जाए। ये इमरजेंसी है, दिल्ली को साफ करना, दिल्ली के पोल्यूशन को कम करना इसलिए जरूरी है। जब तक हम दिल्ली को साफ नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से लेगेसी वेट को हटाया जा रहा है उसमें तो तेजी लानी है, लेकिन कोई एजेंसी किसी भी तरीके का अगर वायलेशन करता दिखाई देगा, दैट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज, अ स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज, वेदर इट्स एनी PWD or any Delhi state government agency।
श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि आज लगभग 64% नागरिक कम से कम एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं, जिसमें भारत दुनिया में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ देने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। आज नई दिल्ली में इंडिया एज 2025 सम्मेलन में उन्होंने पुराने श्रम कानूनों को नई श्रम संहिताओं में समेकित करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए श्रम कानूनों में बदलाव लाने पर बल दिया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि नई श्रम संहिताओं में महिलाओं का कल्याण प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है, जिसमें देश के कार्यबल और आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए समान वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और अधिक कार्य लचीलेपन पर बल दिया गया है।
हमें लेबर को राइट भी देना है, हमें उसका कल्याण भी करना है, और इसलिए हमने कई ऐसे कदम उठाए। सिर्फ कानूनों का मर्जर ही नहीं, बल्कि श्रम शक्ति के सम्मान का मिशन के रूप में हमने रिफॉर्म को लेके आए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 4 मजदूरों की कथित मौत और कई अन्य के घायल होने की घटना पर जिला अधिकारी और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट जारी करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को द्वारका जिले से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 40 पेटी अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक TVS जुपिटर स्कूटी भी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। गृह मंत्रालय ने आज वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना को लाल किला कार ब्लास्ट मामले के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। उन्हें मामले के मुकदमे और अन्य कानूनी कार्यवाहियों के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने यमुना विहार मेट्रो स्टेशन पे पानी की पाइपलाइन की मरम्मत के कारण बाधित हो रहे आवागमन को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया है। यातायात निर्देशिका के अनुसार पुलिस ने दिल्ली वासियों को वजीराबाद रोड पर जाने से बचने को कहा है। वहीं निर्देशिका में यातायात पुलिस ने यात्रियों से आग्रह किया है कि यात्री ट्रांस यमुना क्षेत्र से आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते चुने, जिसमें विकास मार्ग GT रोड उपलब्ध है। साथ ही पुलिस ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए यातायात कर्मी मौके पर मौजूद हैं। लाल किला में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र आयोजित होने जा रहा है। यह सत्र इस महीने की 8 से 13 दिसंबर तक चलेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 180 से अधिक देशों के लगभग 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सम्मेलन को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाल किला के साथ साथ चांदनी चौक जैसे ऐतिहासिक इलाके में साफ सफाई और सौंदर्यकरण का व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने चांदनी चौक के साथ साथ नेताजी सुभाष मार्ग और आसपास के इलाकों में विशेष सफाई अभियान चलाने के लिए कहा है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि पर्यटन अब केवल सतही क्षेत्र नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन का एक प्रमुख वाहक बन गया है। नई दिल्ली में इंडिया एस 2025 सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि सरकार ने सभी राज्यों की पर्यटन नीतियों का विस्तृत अध्ययन किया है। राजधानी में आज दिन में मौसम सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राजधानी में वायु गुणवत्ता आज बहुत खराब स्तर पर है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 320 दर्ज किया गया, जो वायु की बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में भाजपा 7, आम आदमी पार्टी 3, कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1-1 सीट पर जीती। दिल्ली की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने नगर निगम को 175 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसुनवाई कार्यक्रम में नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 32 दिव्यांगजनों और कई संस्थानों को पुरस्कृत किया। और दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।